ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नेशनल कॉन्फ्रेंस कम राजयोग रिट्रीट में इस ज्ञान सरोवर के सुंदर परिसर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। एक जोरदार करतल ध्वनि स्वयं ही स्वयं के लिए कर लीजिए। राजयोग के प्रथम सत्र में स्वयं की मुलाकात स्वयं से कराने के लिए हम सभी के समक्ष उपस्थित हुई हैं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय बीके उज्ज्वला बहन। आप मुंबई भटवाड़ी से हम सबके बीच में उपस्थित हुए हैं। आप 30 वर्ष से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं एवं 28 ईयर्स से इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप शिपिंग एविएशन टूरिज्म विंग की एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और आप विगत 15 ईयर से इस शिपिंग एविएशन टूरिज्म विंग के अंतर्गत अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में आप JNPT में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आदरणीय दीदी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सब की तरफ से भी आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, अभिनंदन। तो आइए सुनते हैं प्रथम सत्र स्वयं की खोज। ओम शांति,
ओम शांति। गुड इवनिंग। आज इस कॉन्फ्रेंस के राजयोग मेडिटेशन फर्स्ट सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर मनुष्य जीवन में सुख चाहता है, शांति चाहता है, प्यार चाहता है, खुशी चाहता है और उसके लिए प्रयासरत रहता है। पूरी जीवन कई प्रकार के प्रयास करते हैं कि हमारा परिवार खुशहाल हो, तनाव रहित हो, चाहे वैयक्तिक या सामाजिक स्तर हो, पर हर स्तर पर हम सक्सेसफुल हो और इसीलिए हर व्यक्ति प्रयास करता है। कई बार कईयों के मन में ये प्रश्न भी अवश्य आता होगा कि आखिर ये हम सब कर रहे हैं, क्या यही जीवन है और क्या यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और इसीलिए उसे खोजने के लिए कई लोग गिरी कंदराओं में जाते हैं, कई साधनाएं करते हैं और कई साइंटिस्ट अपने हिसाब से इसे ढूंढने का प्रयास करते हैं कि आखिर भी हम है कौन और इस जीवन में, इस विश्व में आने का हमारा उद्देश्य क्या है, हम कहां से आए हैं और हमें जाना कहां है। व्हाट्स द पर्पस ऑफ माय लाइफ, और वो ढूंढने का प्रयास पूरी लाइफ लोग करते रहते हैं। आज हम आपको बता दें कि आप जिस स्थान पर पहुंचे हैं ये वह स्थान है जहां हमारे सभी प्रश्नों का हमें जवाब मिल सकता है और इसीलिए हम ये कह सकते हैं अ सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स, आत्मज्ञान। यही वो ज्ञान है जिसका वर्णन भारत देश के सभी शास्त्रों के अंदर आता है कि जिस व्यक्ति ने अपने आप को खोज लिया उसने जीवन का सार प्राप्त कर लिया। जिस व्यक्ति ने अपने आप को जान लिया उसने ही सही मायने में जीवन जीना सीख लिया। तो आज हम उस चीज को सुनेंगे, हम उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जीवन जीते हुए हर स्तर पर कई चैलेंजेस को आज हम सभी फेस करते हैं। और कई बार ये प्रश्न आता है कि आखिर ये कब तक चलेगा, आखिर भी जीवन में इतने अप्स एंड डाउन्स है, इसका कोई सॉल्यूशन है भी या नहीं भी? और देगा तो कौन देगा? तो ये जो कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन भी आज पूरा हो जाएगा, क्योंकि जिस ज्ञान को आज हम सुन रहे हैं ये एक सनातन सत्य है। तो आइए आज उस सत्य को हम जानते हैं कि आखिर भी मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है। वैसे तो जब भी किसी से पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो हम जिस प्रकार से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, वो अपना नाम, अपना कुल, अपना देश, या फिर अपनी क्वालिफिकेशन, अपना पोस्ट पोजीशन, अपना प्रोफेशन, तो ये सब हमारा रियल आइडेंटिफिकेशन है, ये हमारी सही पहचान है। आइए राजयोग मेडिटेशन के इस प्रथम सत्र में हम इस चीज को जानते हैं। तो राजयोग मीन्स कनेक्शन ऑफ सोल विद द सुप्रीम सोल। आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन राजयोग है। तो सबसे पहले हम जानते हैं आत्मा क्या है। अब आत्मा के लिए हम इंग्लिश में जीवन के लिए हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन वर्ड ह्यूमस से आया है और ह्यूमस मीन्स सॉइल, मट्टी। तो शरीर और आत्मा मिलकर के मानव जीवन है। और शरीर की सत्यता है पांच तत्व। हम सब जानते हैं यह शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। और इसीलिए मनुष्य को जीवन जीने के लिए ये पांच तत्व जरूरी है। आज हमें प्रकाश चाहिए, आज हमें भोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो यह सब चीजें अर्थात ये पांच तत्व जो है वो हमारे शरीर को जीवन के लिए आवश्यक है। अब जिस प्रकार शरीर की आवश्यकता ये पांच तत्व है, उसी प्रकार आत्मा की आवश्यकता क्या है? तो आत्मा की आवश्यकता है 7 ओरिजिनल क्वालिटीज, या हम कहेंगे कोर वर्चुस। आज तक हमने इनके बारे में सुना अवश्य है और हर व्यक्ति इसे चाहता भी है। हर व्यक्ति जो सुख, शांति, आनंद की अनुभूति करना चाहता है, वास्तव में देखा जाए वो हम सबके पास है। तो इस जहां हम आए हैं, इस ज्ञान को हम कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। तो आत्मा के अंदर वास्तव में ज्ञान निहित है। किस प्रकार? जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमें उसकी नॉलेज अवश्य होती है। अब आध्यात्मिक ज्ञान हमें ये बताते हैं कि कोई भी कार्य करते समय हमें फुल अंडरस्टैंडिंग भी हो। कभी कभी हम कोई कार्य कर लेते हैं और फिर हमें लगता है इसके बजाय ऐसा कर लेते, इस व्यक्ति के साथ ऐसा बिहेव कर लेते तो शायद अच्छा होता। इसका मतलब उस समय वह अंडरस्टैंडिंग मेरे पास नहीं थी। तो यह ज्ञान हमें वह अंडरस्टैंडिंग प्रदान करता है। इसीलिए ज्ञान हमारे जीवन में एक प्रकाश का कार्य करता है। दूसरा, हमारे जीवन में चाहिए प्यूरिटी। प्यूरिटी का अर्थ है शुद्धि। कभी कभी किसी व्यक्ति के साथ बात करते हुए, व्यवहार में आते हुए हम समझते हैं, अरे वो व्यक्ति बात तो अच्छी कर रहा है पर लगता नहीं कि उस पर हम विश्वास करें। अर्थात वो जो बात कर रहा है उस बात पर हम भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, हमें लगता है वो बोल कुछ और रहा है और वो शायद करेगा कुछ और। तो इसीलिए अंदर बाहर एक हो उसको कहते हैं शुद्धि। तो एक चाहिए ज्ञान, दूसरा चाहिए शुद्धि। तीसरा, हर मानव आत्मा को प्यार चाहिए। और कभी कभी लोग ये भी कहते हैं, भाई खाना नहीं खिलाओ चलेगा, परंतु प्यार से दो बात तो करो। तो प्यार चाहिए। और इसीलिए भगवान से जब प्रेयर करते हैं ना, तो भी क्या कहते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो भगवान से भी हम प्यार की ही कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और प्यार से जब कोई व्यक्ति हमसे व्यवहार करता है, तो हमें अपनापन फील होता है। तो ज्ञान, शुद्धि, प्रेम, और जब एक तीनों का अनुभव होता है, तो हमें शांति की अनुभूति होती है। अब शांति के लिए तो व्यक्ति कितना प्रयास करता है, और शांति के लिए ही तो मंदिर में जाते हैं, कई व्रत उपवास करते हैं। और ईश्वर ये कहते हैं कि शांति आपका अपना स्वधर्म है। शांति सिर्फ एक पल की सोच की दूरी पर है, और इसीलिए शांति हम सबके पास है। कभी कभी कई कॉन्फ्रेंसेस हम सुनते हैं जो वर्ल्ड पीस के लिए होती है, पर देखा जाता है उस कॉन्फ्रेंसेस का जो एजेंडा होता है बड़ा अच्छा होता है, पर आज हम देखते हैं वर्ल्ड में पीस कहाँ है। तो हर व्यक्ति यदि शांति अपना स्वधर्म है, मेरा ओरिजिनल नेचर है, इसमें स्थित हो जाए, तो सबके पास शांति आएगी। तो ज्ञान है, शुद्धि है, प्रेम है, शांति है, तो हम सुख की अनुभूति करते हैं। क्योंकि जीवन भर जिस भी प्रकार के कार्यकलाप हम करते हैं, हमारा उद्देश्य होता है जीवन सुखी हो जाए, परिवार सुखी हो जाए। तो सुख हमारी आंतरिक अनुभूति है। जिस प्रकार शांति ओरिजिनल क्वालिटी है, सुख भी हमारे पास। और इन गुणों को यदि हम अनुभव करते हैं, तो निश्चित हमारे पास आनंद होता है। आज आनंद को प्राप्त करने के लिए लोग कहाँ घूमने जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, किस लिए? आनंद प्राप्त हो। पर हम सब जानते हैं वह सभी आनंद टेम्पररी है। यदि हम ये समझ ले कि यह तो मेरा ओरिजिनल नेचर है, तो सदा ही हम आनंद में रह सकते हैं। और ये सभी गुण जब हमारे में एक्सपीरियंस हम कर पाए, तो निश्चित रूप से हम स्वयं को सशक्त फील करते हैं, अर्थात पावरफुल फील करते हैं, जिसको हम दूसरे शब्द में विल पावर कहते हैं। तो ये सातों ही गुण आत्मा का ओरिजिनल नेचर है, ये हम सबके पास है। सिर्फ जरूरत है इसे हमें समझने की, अंडरस्टैंड करने की और फील करने की। तो आज जब हम इस कैंपस में आए हैं, तो जब से आप आए हैं, आपने फील किया होगा यह सातों ही गुण इस कैंपस में हमें अनुभव होते हैं। तो ईश्वर हमें बताते हैं कि जब आपने अपने आप को पहचान लिया, तो आप अपनी स्वस्मृति में स्थित हो जाते हैं, तो सुख, शांति, प्रेम, आनंद आपके ही पास है। अर्थात जिस प्रकार शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है, तो पांच तत्व शरीर को चाहिए, उसी प्रकार आत्मा की ये ओरिजिनल क्वालिटीज है जो आत्मा चाहती है। और यदि इन गुणों का हम लाइफ में अनुभव करें, तो शरीर के ऊपर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आज हम सब जानते हैं, हम सभी हेल्थ के लिए बहुत अवेयर है, और मेडिकल साइंस ये कहती है मोर देन 80% डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक। तो 80% से ज्यादा बीमारियां मन से होने वाली है। इसीलिए यदि हम मन की शक्ति को पहचान करके उसका अनुभव में रहते हैं तो ये हमारी पूरी बॉडी सिस्टम जो है वो नॉर्मल रह सकती है। तो आप इसमें देखेंगे यदि हम शांति का अनुभव कर पाते हैं तो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छा वर्क कर सकती है। आज जब से हम योगा डे मनाते आ रहे हैं तो सभी बहुत अवेयर हो गए हैं और प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो जब हम शांति का अनुभव करेंगे तो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा कार्य करेगी। यदि हम ज्ञान को अपनाएंगे, अंडरस्टैंडिंग हमारे लाइफ में आएगी तो हमारी नर्वस सिस्टम अच्छा कार्य करेगी, क्योंकि हम जानते हैं हमारी नर्वस सिस्टम ही पूरे बॉडी को मैसेज देती है। तो यदि हमारे पास ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग और वो भी हम ये कह सकते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो तो हमारी नर्वस सिस्टम अर्थात जो हमारी मैसेज सिस्टम है वो अच्छा कार्य करेगी। और जब हमारा मैसेज सही जाएगा तो शरीर के द्वारा अच्छा सही कार्य हो सकता है। तीसरा है सुख, और सुख का कनेक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम से। जब हम खाना खाते हैं ना, यदि कोई बात कर रहा होगा, कोई नकारात्मक बात करता है तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कम से कम शांति से, सुख से खाना तो खाइए। तो सुख से खाना खाने का मतलब यह है यदि हमारी मेंटेलिटी सुख की है तो वह भोजन सही तरीके से और डाइजेस्ट होगा और डाइजेस्ट होने के कारण हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। इसलिए सुख से खाना खाना है। डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं आप चबा चबा करके खाना खाइए। इसका अर्थ ये होता है प्यार से खाइए और खाना खाते समय अवेयरनेस के साथ खाइए तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करेगी। तो सुख का कनेक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम से, प्यार का कनेक्शन हार्ट से। इसीलिए जब भी हार्ट पेशेंट को डॉक्टर ट्रीट करते हैं तो उनके जो रिलेटिव्स है उनको ये बताया जाता है कि इनको कोई भी नेगेटिव बात, टेंशन की बात नहीं बताइए और इनके साथ प्यार से पेश आइए और इनको हमेशा खुश रखिए। ये हार्ट पेशेंट के लिए कहा जाता है। तो जितना हम प्रेम की, प्यार की अनुभूति में रहेंगे उतना हमारा हार्ट का फंक्शन अच्छा चलेगा। नेक्स्ट है प्यूरिटी। प्यूरिटी अर्थात शुद्धि। यदि सभी गुण हमारे अंदर हम फील कर पाते हैं, अनुभव में लाते हैं, उसकी स्मृति में रहते हैं, व्यवहार में आता है तो नेचुरल है हमारी बॉडी की सभी सिस्टम्स नॉर्मल चलेगी। और इसके साथ साथ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस जो है, खुशी जो है वो हमारे हार्मोन सिस्टम से रिलेटेड है। आज हम देखते हैं जब भी किसी को टेंशन होता है ना तो ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे कि शरीर कांपने लगता है, पसीना छूट जाता है, कोई व्यक्ति भूल जाता है। और यदि व्यक्ति खुशी में रहता है तो सही हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो उसकी मन की और तन की दोनों शक्ति बढ़ जाती है। तो इसीलिए सातों ही गुण आत्मा की अनुभूति है। वो जितना उस अनुभूति में, उस स्मृति में रहेंगे, जितना उन अनुभूति को हम शेयर करेंगे उतना ही हमारी बॉडी सिस्टम नॉर्मल काम करेगी। तो आत्मा और शरीर दोनों को मिलाकर के हमारा जीवन सुखी होता है। अब जब हम आत्मा की बात कर रहे हैं तो आत्मा कैसी है? आत्मा के लिए कहा जाता है पॉइंट ऑफ लाइट, अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु, और कहां रहती है? दो आंखों के बीच। जिस प्रकार शरीर की कर्मेंद्रिया है, हाथ है, पैर है, मुख है आदि है, उसी प्रकार आत्मा की तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार। तो शरीर के कर्म इंद्रियों के द्वारा शरीर कार्य करता है, आत्मा भी इन शक्तियों के माध्यम से कार्य करती है। मन का फंक्शन क्या है? मन आत्मा की विचार करने की शक्ति है। और सारे दिन भर में हमारे मन में हजारों विचार चलते हैं। उन सभी विचारों को देखा जाए तो मुख्यतः चार प्रकार के विचार आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी, वेस्ट। सकारात्मक विचार हम सब जानते हैं, जैसे जब यहां का प्रोग्राम आपको मिला और आपने सोचा कि हमें जाना है, तो सकारात्मक विचार है। और जब आपको जाने का आपका प्लान बन गया फिक्स, तो आपको कितनी खुशी हुई और उस खुशी ने हमको स्ट्रेंथ भी दिया, शक्ति भी दी, तो पॉजिटिव विचार है। और जितना पॉजिटिव विचार है उतना ही हर कार्य सक्सेसफुल है। दूसरे होते हैं नेगेटिव विचार। नेगेटिव को भी हम जानते हैं, आजकल तो हम बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दो वर्ड हम सब बहुत नॉर्मल लाइफ में यूज कर रहे हैं कि भाई आखिर नेगेटिव क्यों सोचते हो, पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव को हम जानते हैं, यदि पॉजिटिव सोचते हैं तो एनर्जी बनी रहती है और बढ़ती भी है, पर यदि हमने नेगेटिव सोच लिया तो हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। नेसेसरी थॉट्स वो तो जरूरी है, दिन भर में कौन सा कार्य करना है, कहाँ जाना है, किस व्यक्ति से बात करनी है, आवश्यक कार्य है, ये सब विचार हम करते हैं। और वेस्ट थॉट व्यर्थ क्या है? जिससे कोई आउटपुट नहीं है, जिससे एनर्जी जा रही, जिससे वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम, ऐसे कई बार हम सोच लेते हैं। उदाहरण के लिए कई बार हम रास्ते से जा रहे होते हैं और कई चीजों को देखते हुए हम ये सोच लेते हैं, गवर्नमेंट ऐसा करती है, पब्लिक ऐसा करती है। अब इस प्रकार के जो विचार होते हैं उससे हमारा डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, उससे हमें कोई फायदा नहीं, तो है वेस्ट। तो मन एक बीज का कार्य करता है, विचार एक बीज है, और वो बीज जब कहां पर डाला जाता है तो फलीभूत अवश्य होता है। इसलिए जब मन से हम सोचते हैं तो हम क्या सोच रहे हैं, इससे फायदा क्या है। दूसरा है इंटेलेक्ट, बुद्धि। बुद्धि का रोल है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। बुद्धि को थर्ड आई कहा जाता है, तीसरा नेत्र है। तो बुद्धि कैसे कार्य करती है? बुद्धि पहले अंडरस्टैंड करती है, फिर विजुअलाइज करती है, देन परख लेती है, डिस्क्रिमिनेशन, और फिर डिसीजन लेती है। जैसे आपको यहां आना था तो पहले तो आपने समझ लिया, अच्छा क्या कार्यक्रम क्या है, इससे क्या होगा, अंडरस्टैंड, विजुअलाइज किया, अच्छा हम जाएंगे, फिर ये हमारे साथ होंगे, इस प्रकार प्रोग्राम होगा, दीदी ये बताएगी, विजुअलाइज, देन परखना। किसी और को भी साथ में लेने के लिए उसको भी हमें शेयर करना पड़ता है उस, और कई बार लोग क्या करते हैं आजकल, इंटरनेट पर सर्च करते कि भाई जहां हमें जाना है एक्चुअल में वहां वो स्थान कैसा है, और फिर हम डिसीजन लेते हैं। तो बुद्धि जो है वो डिसीजन मेकिंग पावर है। और थर्ड वन है संस्कार। अब संस्कार जो है वो भी चार प्रकार के, ओरिजिनल, पास्ट बर्थ, हेरिडिटी, सोशल सर्कल। अब ओरिजिनल संस्कार अर्थात जो हमने सात गुणों को देखा, वो है हमारे ओरिजिनल संस्कार, वही नेचर है। और वो हम कब कब देख पाते हैं? आप देखिए जब छोटा बच्चा होता है ना, उस बच्चे को देखिए, किसी भी धर्म का है, कैसा भी बच्चा है, पर वो बच्चा जब स्माइल करता है ना, तो उसके स्माइल है ओरिजिनल नेचर है। जब वो ईश्वर के घर से आया है तो ईश्वर के घर से जो उसने संस्कार लाए हैं वो है ओरिजिनल संस्कार, मूल संस्कार, और वो खुशी देते हैं सबको। इसलिए सोया हुआ जो छोटा बच्चा होता है वो सोया हुआ रहता है, उसका चेहरा देखकर के भी हमें सुख की फीलिंग होती है कि कितना अच्छी नींद सोया है, वो ओरिजिनलिटी। सेकेंड है पास्ट बर्थ, पूर्व जन्म के संस्कार। हम सब जानते हैं आजकल कई ऐसे प्रोग्राम्स आ रहे हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे कितने टैलेंटेड हैं, कहां से सीख के आए, 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल का बच्चा बहुत टैलेंटेड है, पूर्व जन्म के संस्कार लेकर के आया है। और इस जन्म में जैसे 7-8 साल के बच्चे भी सत्संग कर रहे हैं, है ना, और शास्त्र कंठ भी है उनको, पूर्व जन्म के संस्कार लेके आए हैं। फिर माता पिता से मिले हुए संस्कार, माता पिता से मिले हुए संस्कार। कभी कभी किसी बच्चा समझो झूठ बोलता है और कोई कहते भाई क्यों झूठ बोलते हो, बस यूं ही, बहुत समझाने के बाद भी अच्छा अभी से नहीं बोलूंगा, और फिर नेक्स्ट टाइम देखो तो फिर झूठ बोलता है, भाई क्यों बोला, नहीं बस ऐसे ही। तो लोग कहते हैं, उनको जो पहचानने वाले वो कहते हैं, दीदी आपको पता नहीं है इसके तो पूरा खानदान ही झूठ बोलता है। अर्थात माता पिता से मिले हुए संस्कार। सोशल सर्कल, हम जिनके साथ में बड़े होते हैं, हम जिन लोगों जिस सोसाइटी में रहते हैं, तो उनके साथ रहते रहते उनके संस्कार भी हमारे में आ जाते हैं। तो ये है सोशल सर्कल। ये 4 प्रकार के संस्कार हर आत्मा में होते हैं। अब यह संस्कार हमें पता है, पर कभी कभी हम अपने संस्कारों को बदलना भी चाहते हैं। क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि हमें लगता है ये ठीक नहीं है, इसके बजाय ऐसा होना चाहिए, और उसके लिए हमारे लाइफ में चाहिए दृढ़ता, और वो हम कर सकते हैं। और इसीलिए कई पर्सनालिटीज को हम देखते हैं जिनका नाम जानते भी है और उनकी बायोग्राफी भी हम जानते हैं। ये कुछ पर्सनालिटीज है, स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्धा, दादी प्रकाश पनी जी, इनके जीवन के कई ऐसे उदाहरण है जिससे पता चलता है कि इन्होंने अपने लाइफ में इन 7ों ही गुणों का अनुभव करने के कारण उनकी पर्सनालिटी को हम चार्ज पर्सनालिटी कहते हैं। चार्ज क्यों? क्योंकि आज हम जानते हैं कि यदि बैटरी फुल चार्ज नहीं होगी तो कैसे प्रकाश कैसे देगी, फुल प्रकाश नहीं दे पाएगी। उसी प्रकार आत्मा की बैटरी जब फुल चार्ज नहीं होती है तो हमें बोल से व्यवहार से अनुभव होता है। कभी कभी कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, इरिटेट हो जाता है और जल्दी मूड ऑफ कर देता है तो क्या कहते हैं, भाई इसकी बैटरी डिस्चार्ज है। तो चार्ज बैटरी का मतलब होता है कि हम स्ट्रेंथन हो, अंदर से पावरफुल हो, इनर स्ट्रेंथ हो, विल पावर हो, तो चार्ज कहेंगे। अब चार्ज रहने की आवश्यकता क्यों है, ये भी तो प्रश्न है कि यह सब आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज की जरूरत क्या है, क्यों हम ये सब सुने। इसकी जरूरत है क्योंकि हम ये चाहते हैं हमारी लाइफ स्ट्रेस फ्री रहे, हम जो भी कार्य करें उस कार्य में हमें सफलता मिले, हम जिन भी लोगों के संपर्क में आए वो सभी हमारी बात को माने। इट मीन्स इन अदर वर्ड्स, द चार्ज ऑफ माई लाइफ इट शुड बी इन माई हैंड, मेरे जीवन का चार्ज मेरे हाथ में होना चाहिए, अर्थात मेरी लाइफ का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में हो। क्या आज ऐसा है? आज ऐसा है कि मैं चाहूं मैं सदा ही खुश रहूं तो मैं सदा खुश रह सकती हूं, ऐसा है? यदि कोई सोचते हैं कि मैं चाहूं तो मैं हमेशा खुश रह सकता हूं, अपना हाथ उठाएंगे? थैंक्स। तो हम सदा खुश रहना चाहते हैं और रह सकते हैं यदि हमारी बैटरी फुल चार्ज है। तो इस नॉलेज का फायदा ही ये है कि हमारी बैटरी फुल चार्ज रह सकती है, हम जैसे चाहिए अपने लाइफ में रह सकते हैं, चाहे हम सुख फील करें, शांति फील करें, आनंद फील करें या प्यार की अनुभूति में रहे। अर्थात हम नहीं चाहे तो कभी दुखी नहीं होंगे, नाराज नहीं होंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे, टेंशन में नहीं आएंगे। इसको कहते हैं फुल चार्ज बैटरी। आज जो बीमारियां होती है तो डॉक्टर क्या कहती है? आप टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर क्या कहते हैं? पॉजिटिव सोचिए, अच्छे मौसम में रहिए और आपके फैमिली के साथ आप रहिए। अर्थात हम ओरिजिनल नेचर में रहे उससे ही हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। अर्थात ये है चार्ज बैटरी। स्वामी विवेकानंद जी का एक एग्जाम्पल है। एक बार जब वो अमेरिका गए थे और रास्ते से चल रहे थे तो एक कपल जा रहा था, उनको देख करके उस लेडी ने हंस दिया। अर्थात उनका सन्यासी का वेश था। तो विवेकानंद जी कहती है हमारे देश में हमारी पर्सनालिटी टेलर डिसाइड नहीं करता है, संस्कार डिसाइड करते हैं। पर यदि हम उनकी जगह होते तो हमें कैसा लगता? तो चार्ज है तो उन्होंने उस प्रकार से रिएक्ट किया, रेस्पॉन्ड किया। उसी तरह गौतम बुद्ध का उदाहरण हम जानते हैं। जब वो जंगल में जा रहे थे उनको कहा गया कि आप मत जाइए, पर वो गए। और जो व्यक्ति इस प्रकार से खूंखार था उस व्यक्ति को उन्होंने चेंज कर दिया। दादी प्रकाश मणि जी के जीवन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। एक्स चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, हमारी पूर्व प्रशासिका, दादी जी के जीवन में बहुत ऐसे चैलेंजेस आए, इंसिडेंट्स आए, पर दादी जी अंदर से इतना स्टेबल होती थी और स्टेबिलिटी के साथ चेहरे की जो स्माइल है ना वो इसी प्रकार से हमेशा रहती थी। तो ये जो महान हस्तियां होकर के गई है, चाहे आज भी संसार में है, ये है चार्ज पर्सनालिटी। और ये ऐसी हस्तियां है जो केवल उन्होंने अपने लाइफ को शाइन नहीं किया, परंतु उनके संपर्क में जो भी लोग आए उनके जीवन भी उन्होंने बदल दिए अपने ओरा से, अपने प्रभामंडल से। तो राजयोग मेडिटेशन अर्थात आत्मज्ञान हमें वो शक्ति प्रदान करता है कि हम अपने जीवन को जिस दिशा में ले जाना चाहे वहां ले जा सकते हैं। हम अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बना सकते हैं, अर्थात हम अपनी पर्सनालिटी को चार्ज पर्सनालिटी बना सकते हैं और अपने जीवन का चार्ज अपने हाथ में ले सकते हैं। ये इस ज्ञान का फायदा है। तो हर कोई चाहेगा कि ऐसा ज्ञान हम क्यों नहीं अनुभव करें, और इसीलिए हाउ टू ट्रांसफॉर्म आवर पर्सनालिटी। आइसबर्ग को हम जानते हैं, हिमशिखा जो होती है 90% पानी के अंदर उसका पार्ट रहता है और 10% सरफेस पर। अब जो 90% है वो पार्ट जहां मूव करता है वही ऊपर का पोर्शन मूव करता हुआ हमें नजर आता है। कुछ ऐसा ही हमारे साथ है, हम बोलते कुछ और है और करते कुछ और है, हम चाहते कुछ और है हमसे होता कुछ और है। अर्थात कभी कभी किसी व्यक्ति को हम कहते डोंट माइंड, मेरे मन में नहीं था मेरे मुख से निकल गया। तो मन में नहीं था मुख से निकल गया, तो फिर किया किसने? तो ये जो चार प्रकार के हमारे संस्कार है जो 90% काम कर रहे हैं, यह संस्कार है वो हमारे लाइफ को आगे ले जा रहे हैं। तो यदि हम चेंज करना चाहते हैं अपनी पर्सनालिटी को तो हमें अपने आप में दृढ़ता लानी होगी, और उस दृढ़ता के साथ इन चार प्रकार के संस्कार को परिवर्तन करके हम अपने जीवन की नैया को जिस दिशा में ले जाना चाहे वो ले जा सकते हैं। तो ये आइसबर्ग का उदाहरण हमें ये बताता है कि जिस प्रकार आइसबर्ग काम करता है आप भी अपनी पर्सनालिटी के लिए काम कर सकते हैं। और राजयोग मेडिटेशन से अर्थात ईश्वर से अपने आप को कनेक्ट करके हम हमारे में वो दृढ़ता आ सकती है। और इसीलिए चार्ज पर्सनालिटी अर्थात सुप्रीम सोल के साथ कनेक्शन और परमात्मा के साथ कनेक्शन करके जो वास्तव में सागर है परमात्मा जो हम सबका पिता है उनके साथ हम अपने आप को जोड़ देते हैं और उनसे वो शक्ति लेकर गुणों को लेकर के अपनी पर्सनालिटी को चार्ज करते हैं। तो आइए अपनी पर्सनालिटी को चार्ज करने के लिए कुछ पल हम वो अभ्यास करते हैं। तो जैसे यहां पर दिखाया गया है कि आत्मा इस शरीर में कहां रहती है, जैसे हमने समझा दो आंखों के बीच, अब दो आंखों के बीच ही क्यों रहती है? तो जिस प्रकार किसी भी गाड़ी में ड्राइवर की सीट फिक्स होती है उसी तरह आत्मा की सीट यहां फिक्स है, क्योंकि शरीर के अंदर मस्तिष्क जो है वो सबसे मेन रोल प्ले करता है। और इसीलिए द सेंटर ऑफ द फोरहेड यहां आत्मा का स्थान दिया हुआ है, और मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच आत्मा का निवास स्थान है। तो यहां रह करके आत्मा पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है चलाती है। तो आज इस ज्ञान से हमें समझ में आ गया कि हमारी रियल आइडेंटिटी है मैं पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा हूं, मेरे अंदर 7 ओरिजिनल क्वालिटीज है और आत्मा की 3 शक्ति मन बुद्धि संस्कार। इन 7 गुणों का अनुभव करने से हमारा शरीर स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और आत्मज्ञान से हम अपने जीवन का चार्ज अपने हाथ में ले लेते हैं। अब ये भी है कि आत्मा आई कहां से, ये भी प्रश्न है। तो इस संसार में हम आए कहां से? तो इस चित्र में आप देख रहे हैं पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे, नीला आसमान है। इससे पार ये है 5 तत्वों की दुनिया, इससे पार छठा तत्व कहा जाता है जिसे शास्त्रों के अंदर ब्रह्म महातत्व कहते हैं। इसी को किसी ने निर्वाण धाम कहा, किसी ने परम धाम कहा, किसी ने शांति धाम कहा। और उस लोक से हम इस सृष्टि पर आए हैं और उस लोक में सभी आत्माएं रहती है और परमात्मा सबसे ऊपर रहते हैं। तो उस निर्वाण धाम में शांति धाम में सब आत्माएं रहती है, वहां से हम इस सृष्टि पर आकर के अपना रोल प्ले करते हैं। तो आत्मा का यह सत्य परिचय आज हमें प्राप्त हुआ। जिस प्रकार हम कहीं भी जाते हैं तो पूछा जाता है आपका आईडी बताइए। अब आईडी में क्या होता है? तो नाम। तो आज हमें यह परिचय प्राप्त हुआ जो हमारा रियल परिचय है, जो अविनाशी परिचय है वो ये है, नाम आत्मा है। अब हमारा फोटो कैसा होगा? तो तो आत्मा कैसी है? सटल है, पॉइंट ऑफ लाइट है। क्वालिफिकेशन, सेवन वर्चुस। और हमारा एड्रेस क्या है? तो टेम्पररी एड्रेस है, सेंटर ऑफ फोरहेड, दो आंखों के बीच। और हमारा परमानेंट एड्रेस है निर्वाण धाम, शांति धाम, परम धाम, जो शांति का लोक है। और ऑक्यूपेशन, परफॉर्म एक्शंस थ्रू बॉडी, इस शरीर के द्वारा कार्य करना, ये हमारा असली परिचय, परमानेंट परिचय है। तो आज तक हु एम आई, मैं कौन हूं, दूसरा प्रश्न था कहां से आया हूं, और तीसरा प्रश्न था जीवन का उद्देश्य क्या है। तो हम इस संसार में आए हैं निर्वाण धाम से, नाम आत्मा है, और आए हैं इस सृष्टि रंगमंच पर अपना पार्ट प्ले करने, कार्य करने। तो चलिए कुछ पल के लिए उस आत्म अनुभूति में खो जाते हैं। आपको कुछ सजेशंस देंगे, हम कुछ बोलेंगे, और उन शब्दों को आपको फील करने की कोशिश करनी है। सामने पॉइंट ऑफ लाइट है, उस पर अपनी आंखों को एकाग्र करें, और जो चिंतन आपको दिया जाएगा वो अपने मन में दोहराए, आंखों से विजुलाइज करें और फील करने का प्रयास करें। इस सुंदर वातावरण में आज मैंने स्वयं के सत्य परिचय की बातें सुनी। यह संसार मेरा कर्म क्षेत्र है, मैं आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट प्ले कर रही हूं। यह शरीर मेरा एक साधन है, मैं आत्मा इस शरीर में दो आंखों के बीच निवास करती हूं। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु आत्मा, मेरा मूल स्वभाव शांति, प्रेम, मैं सुख स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, मैं आत्मा मन के द्वारा सोचती, बुद्धि से निर्णय करती हूं, हर कर्म मेरा संस्कार बनता है, वास्तव में मैं इस संसार में निर्वाण धाम से आई, वह शांति था। पिता परमात्मा के घर से आई, मैं आत्मा उस परम शांति की अनुभूति करती। मेरा हर कर्म, हर बोल शांति की अनुभूति से होता है। यह ईश्वरीय ज्ञान इस शांति की अनुभूति से, सुख की अनुभूति से मुझे चार्ज करता है। मैं ये चाहती हूँ इस आत्मज्ञान के द्वारा मेरी पर्सनालिटी भी चार्ज पर्सनालिटी बन जाए और मैं ईश्वर से प्राप्त सर्व गुणों का अनुभव करूं। मेरा मन शांत है, मेरी बुद्धि एकाग्र है, मेरा शरीर स्थिर है। ओम शांति शांति शांति।